श्रीप्रह्लादुवाच त्वय्येव दत्तं पदमिन्द्रमूर्जितं कृतं तदेवाद्यं तथैव शोभनम् मन्यमानस्य कृतो हि निग्रहो विभ्रंशितो यश्रिय आत्ममोहना श्रीप्रह्लादुवाच त्वय्येव दत्तं पदमिन्द्रमूर्जितं कृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो हि नग्रहो विभ्रंशितो यश्रिय आत्ममोहना श्रीप्रह्लादुवाच त्वय्येव दत्तं पदमिन्द्रमूर्जितं कृतं तदेवाद्यं तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो हि अनुग्रहो विभ्रंशितो यश्रिय आत्ममोहना श्रीप्रह्लाद उवाच। प्रह्लाद महाराज ने कहा, त्वया आपके द्वारा एव निसंदेह दत्तं दिया गया पदम यह स्थान इंद्रियम इंद्र का उर्जितम अत्यंत महान हुतम छीन लिया गया तथा वह एव निसंदेह अद्य आज तथा जिस प्रकार एव निसंदेह शोभनम सुंदर मन्ये मानता हूँ महान महान अस्य इसका बलि महाराज का कृतः आपके द्वारा की गई ही निसंदेह अनुग्रह कृपा विभ्रंशितः से विहीन यत् क्योंकि श्रेया उस ऐश्वर्य से आत्ममोहनात् जो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को आच्छादित करने वाला था। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, प्रह्लाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बलि को इंद्रपद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और अब उसी को आपने छीन लिया है। मेरे विचार से आपका देना लेना एक सा सुंदर है, क्योंकि स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुए था। अतएव आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीन कर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया। तात्पर्य कहा गया है कि यस्य हम अनुग्रहामि हरिष्यत धनं शनैः। भगवान की कृपा से ही मनुष्य को सारा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु यदि इस ऐश्वर्य से मनुष्य गर्वित हो उठता है और आत्म साक्षात्कार की विधि को भूल जाता है तो भगवान उस ऐश्वर्य को अवश्य छीन लेते हैं। भगवान अपने भक्त को उसका वैधानिक पद ढूंढने में सहायक बनकर अनुग्रह करते हैं। इसके लिए भगवान भक्त की हर सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी भौतिक ऐश्वर्य घातक होता है, क्योंकि इससे मनुष्य का ध्यान इस मिथ्या प्रतिष्ठा की ओर खींच जाता है कि मैं ही हर वस्तु का स्वामी हूं, जबकि तथ्य इसके विपरीत रहता है। भक्त को इस भ्रम से बचाने के लिए भगवान विशेष कृपा प्रदर्शित करके उसका सारा धन छीन लेते हैं। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्यति तद्धनं शनैः। हरे कृष्णा। तो अध्याय का नाम है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। हम सब लोग पिछले कुछ प्रसंगों में समझ रहे हैं इस बात को कि किस प्रकार बलि, जो कि एक महाजन है, 12 महाजनों में एक महाजन उन्हें कहते हैं जो उनके अंदर धर्म का आचरण होता है और धर्म का ज्ञान होता है, और वो समाज में अपने आचरण के द्वारा धर्म को स्थापित करते हैं। तो इन 12 महाजनों में इस प्रसंग में हमें बलि महाराज का जीवन चरित्र दिखाई देता है। बलि महाराज पूरा ऐश्वर्य, तीनों लोक उनके अंडर, और आज के इस श्लोक में 16 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज उवाच आ गया। दैत्यों के परिवारों में अगर हम देखें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की जो वंश परंपरा चली आ रही है उसमें हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष तो कितने बड़े असुर थे, और हम जानते हैं कि ये दोनों जय और विजय का ही रूप हैं। लेकिन जो असुर परंपरा आ रही है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की वंशावली, उसमें हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु के परिवार में, असुरों के परिवार में एक भक्त ने जन्म ले लिया। कौन से भक्त थे वो? भक्त प्रहलाद महाराज। और वो इतने अच्छे भक्त हुए, उनकी भक्ति का स्तर इतना ऊंचा था कि जब उनके पिता ने पूरा प्रयास किया उनको मारने का, उनको भक्ति छुड़ाने का, तो भी भक्ति उनसे अलग नहीं कर पाए। और उसका फल क्या हुआ कि हिरण्यकश्यपु को मरना पड़ा और भक्त प्रहलाद भगवान के द्वारा रक्षित रहे। तो कई बार जब लोग भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप फेवरिज्म दिखाते हैं, कई बार लोग इस प्रकार का तोहमत लगाते हैं भगवान पर कि मैं भी आया था मंदिर, मेरा साथ वाला भी आया था, मेरा दोस्त भी आया था, दोनों की एक ही डिमांड थी, मेरी पूरी हुई नहीं उसकी पूरी हो गई, तो क्या किया आपने? भेदभाव कर दिया। मैंने गीता पढ़ी और गीता में देखा भगवान आप कह रहे हैं कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, मैं सबके प्रति समभाव हूं, लेकिन कई जगह दिखाई देता है कि आप फेवर करते हैं, फेवरिज्म करते हैं, ये क्या चक्कर है? तो यहां देखते हैं कि वैसे तो भगवान सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब व्याकुल हो जाते हैं लोग और इंद्र इत्यादि जैसे लोग असुरों के प्रकोप से परेशान हो जाते हैं, जिस तरह यहां पर समाज में दिक्कत रहती है ना, हर समय कभी ISIS का प्रॉब्लम, कभी और पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जाने वाले बम पटाखे, है ना, और कभी दूसरी तरह की समस्याएं, नोटबंदी इत्यादि, जिस तरह से ग्रस्त रहते हैं कई बार, तो हम छोटे मोटे असुरों के द्वारा तो परेशान रहते हैं, लेकिन ऊपर के लोगों में बड़े बड़े असुर हैं, खतरनाक असुर है, और ये भी लोग उनको जीने नहीं देते आराम से, देवताओं को। इनकी शक्ति इतनी होती है कि कई बार शक्ति में देवताओं से आगे निकल जाते हैं। तो इनकी रक्षा करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं या एम्पावर करते हैं किसी न किसी। वैसे तो सदैव देवताओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन ये असुरों के कुल में पैदा होने वाला कौन प्रहलाद, उसकी भक्ति से भी खुश हो गए भगवान, और इतनी अच्छी भक्ति कि इंद्र इत्यादि जितने और देवता हैं वो सब पीछे छूट गए। तो भगवान देखिए देवताओं की तो रक्षा करते हैं, साथ ही साथ अगर कोई भक्त है और वो चाहे असुरों के परिवार में भी क्यों ना जन्मा हो उसकी भी रक्षा करते हैं। तो यहां पर बलि महाराज इन्हीं के पोते हैं, किनके? प्रहलाद महाराज के, वही परिवार आ रहा है। और बलि महाराज भी जो है वो पूरे लोगों के क्या बन गए? स्वामी बन गए। तो आज प्रहलाद महाराज ने देखा कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने एक छोटा सा रूप लिया वामन अवतार, और कहां पहुंच गए डोनेशन मांगने? बलि महाराज के पास। देखिए जिसके पास भी पद होता है, धन होता है, ऐश्वर्य होता है, सुंदरता होती है, उसके अंदर मैं आ ही जाती है कि हम भी कुछ हैं, ये मेरा, ये मैं और ये मेरा, है ना, तो कहीं ना कहीं आ जाती है। वैसे तो भक्त बलिराज भक्त हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जी को ने आज इंगित कर दी कि जब वामन अवतार आए और वामन अवतार ने कहा कि हमें जो है कुछ दीजिए, उन्होंने बोला क्या चाहिए, मांगो, किसके पास आयो, बलि महाराज के पास आयो, क्या चाहिए बोलो। तो वामन अवतार ने क्या बोला भगवान ने, तीन पग भूमि चाहिए, तीन पग भूमि। ब्राह्मण लोग ना भक्ति में लगे रहते हैं, इनको ज्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती थी, इनको मालूम है जहां भी हाथ फैलाएंगे आराम से मिलेगा, तो फिर हम क्यों इकट्ठा करें, नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो जहां भी जाते हैं उनको आसानी से मिल जाता था। अभी सत्युग की बात कर रहे हैं, इससे पिछले के युगों की बात कर रहे हैं। अभी तो आप ऐसा मत सोचना कि हम भी ब्राह्मण दीक्षा लेकर हम भी कहीं भी जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा हमें, पहले ही बाहर लिखा होगा क्या बाहर लिखा होता हमसे सावधान। तो अब वो समय नहीं रहा, अब गार्ड्स होते हैं बाहर, ठीक है। पहले व्यक्ति समाज में साधुओं की स्वागत के लिए उनको बड़े विनम्र भाव से अंदर बुलाता था। श्रीमद् भागवत में लिखा चौथे पांचवें स्कंद में कि जिन परिवारों में भक्तों के चरण नहीं पड़ते, किनके चरण, हाँ, तो वो परिवार किसके समान है, ऐसा शुष्क वृक्ष, ऐसा सूखा हुआ पेड़ जिस पर अजगर इत्यादि लिपटे हुए हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे प्रभु जी हमारे घर में नहीं चरण पड़ते, हमने सोचा हम खुद ही भक्त बन जाते हैं, अपने चरण अपने घर में रहेंगे, ये ज्यादा अच्छा है ना। कलयुग है, लोगों पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, कई बार लोग भक्त के रूप में ही सारे काम करते हैं आजकल तो, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, तो भक्तों के चरण कमल जब घर में पड़ जाएं तो पवित्र हो जाता था, भक्तों के चिंतन मात्र से, उनके स्मरण मात्र से परिवार शुद्ध हो जाते थे। फिर उनको बिलाकर बिठाना, उनको आसन देना, जल इत्यादि देना, उनके चरणों का प्रक्षालन करना, इससे क्या फल मिलेगा इसकी तो बात ही अलग है। तो बलि महाराज ने बोला बताओ क्या चाहिए, हे छोटे से ब्राह्मण क्या चाहिए। तो उन्होंने तीन पग भूमि, तो मतलब उनको बड़ा अजीब सा लगा कि तीन पग भूमि, मेरे जैसे राजा के पास आके कोई तीन पग भूमि मांगे कितना, अरे दौड़ कर जाना जितना चाहिए ले लो, तीन पग कितने जमीन है तुम्हारे पैर, है ना, तीन कदम चले हुए सोने तक की जमीन चाहिए। और इधर से उनके जो गुरु थे कौन थे, शुक्राचार्य, वो समझ गए कि ये जो है स्वयं विष्णु आ गए हैं तुमसे मांगने के लिए, मत देना, खबरदार, ये इस्कॉन रोहनी से आए हैं, एक स्क्वायर फीट की जगह पांडव मेंबर बना के चले जाएंगे, है ना। शुक्राचार्य ने मना किया, वैसे ये शुक्राचार्य का रोल कई बार घर में पत्नियां करती हैं और कई बार पति करते हैं जब कोई डिवोटिस पहुंच जाए उनके पास, है कि नहीं, करते कि नहीं, खबरदार ये डिवोटिस कहां से आए, इस्कॉन से आए, और इस्कॉन का पैसा तो हम यहां का पैसा विदेश भेजते हैं, और वो जो बेचारे वहां डोनेशन इकट्ठे करते हैं वो कहते हैं तुम वहां से इंडिया भेजते हो, तो ये सारा पैसा कृष्ण कहे सब घूम रहा है बस इधर से, हम इधर भेज रहे हैं वो इधर भेज रहे हैं, हम रुपया में भेजते हैं वो डॉलर में भेजते हैं, है ना। तो बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, हमें याद है जब हम पहले जाया करते थे लोग बोलते थे तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, पूछे आपके मंदिर इतने साफ, इतने आलिशान, इतने बड़े बड़े मंदिर, मतलब लोगों को यकीन ही नहीं होता कि हमारा पैसा मंदिर में लग रहा है लोगों को यह था कि पहले डोनेशन दे दो, जो डोनेशन दी जाती थी वो पैसा मंदिरों में नहीं लगता था, वो जो पुजारी होता था उसका खुद का महल बना होता था, हाथ गले में सोने की चेन, सोने की अंगूठी, बड़े बड़े संगल सोने पहना हुआ उसने, उसके खुद के तीन चार होटल चल रहे हैं, पांच सात फ्लैट सिस्टम बनाया हुआ है, और मंदिर की स्थिति वही है, कैसी जर्जर अवस्था, है ना। तो लोगों को लगता ही नहीं है कि मंदिर मतलब गरीब, ब्राह्मण मतलब गरीब, भैया ठीक है। तो लोगों को अब जब इस्कॉन को मंदिरों को देखते कहते बाप रे बाप, इतना बड़ा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, इतना सफाई, इतना सुंदर मैनेजमेंट, तो पैसा कहां से आता होगा? विदेशों से आता होगा। तो कहते आपको क्या जरूरत है सर, आपको तो बाहर से बहुत आता होगा। तो हम बड़ा मुश्किल होती थी हमको कन्विंस करने में, बाहर से कुछ नहीं आता, ये तो जो मंदिर जहां हो जाए उधर से जो लोग भक्त बनते हैं जुड़ते हैं वही बेचारे इकट्ठे करके मंदिर की रख रखाव और सेवा में करते हैं, और जो देते हैं वो पैसा पूरा का पूरा भगवान की सेवा में लगता है, मंदिर के रख रखाव में लगता है, ठीक है कि नहीं। और भक्त लोग जो बेचारे हैं वो तो खुद आप ही के परिवारों में से आए हुए, वो कोई ऊपर से थोड़ी टपके हैं। अभी अगर यहां हाथ खड़ा करा दे तो किसी न किसी परिवार के लोग यहां होंगे, और वो खुद अच्छे परिवारों से, अच्छे बिजनेस से, अच्छे घर से ताल्लुक रखने वाले लोग आज यहां सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग पूरा समय कर रहे हैं और कुछ लोग थोड़ा समय दे पा रहे हैं। तो फिर अब एक नया सिस्टम चला है आजकल, अब बोलते हैं क्या, बाहर से नहीं आ रहा है, अब यहां से वहां जा रहे हैं। तो इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यहां से वहां जा रहे हैं, यहां से वहां क्यों भेजेंगे, इतना धनी है मेरा देश। तो लोगों के जो मिसकंसेप्शन है वो कहीं ना कहीं से सुनकर, या जो देना नहीं चाहते या जिनको जानकारी नहीं है पूरी, उनको लगता है कुछ ऐसा होता होगा। विदेशी संस्था, विदेशी लोग देखते हैं, वो बेचारे रशिया के डिवोटीज पूरा जीवन, पूरा साल जो है काम करते हैं, आलू खाते हैं, आलू कई बार उबाल उबाल कर, पैसे इकट्ठे करते हैं किस लिए, ताकि साल में एक बार वृंदावन मायापुर आ सके। भक्त लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। पहले लोग मंदिरों में जाते थे, क्या देखते थे कि जो पुजारी होता था, भक्त का ध्यान होता था कहां, भगवान पर, और पुजारी का ध्यान होता था उसकी जेब पर, उसको स्पेशल आशीर्वाद, उसको स्पेशल माला, उसको स्पेशल फूल, उसको स्पेशल प्रसाद दिया जाता था, क्योंकि बालों में इसकी जेब कैसी है, भारी है। तो इस प्रकार लुभाता था पुजारी, और फिर उसको भी लगता था कि भैया ये मेरे पैसे पे ध्यान दे रहे हैं तो मुझे स्पेशल आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या करता था वो, उसको लगता था इंपॉर्टेंट भगवान है कि पैसा, जो भगवान के इतने नजदीक खड़ा है उसके लिए भगवान वो नहीं है, उसके लिए भगवान कौन है, पैसा। तो उसको लगता था इतनी पास खड़ा है उसकी भी क्या है जरूरत, क्या है, पैसा। तो महान कौन हुआ, पैसा या भगवान? तो उसको लगता था बचा लो उसको जितना है ना। लेकिन जब वो हमारे मंदिरों में आते हैं तो यहां देखते हैं ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। वो देखते हैं कि भगवान पर मेरा जो है ध्यान है, और भक्त का ध्यान कहां है, उसका भी भगवान की तरफ है। मैं सोचू कि मैं 100-500 उसके हाथ में देके कुछ स्पेशल ले लूं, उसको जरूरत नहीं है इस चीज की, क्योंकि वो 100-500 हजार तो छोड़कर आया है भगवान की सेवा में। और पता चलता है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है वो डोनर से ज्यादा महान था पहले, वो उससे ज्यादा धनी था, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था, कोई IIT इंजीनियर है, कोई MBA कर आया और वहां पर पूजा वर्षिप में लगा हुआ। तो उसको लगता था यहां पर किसकी कीमत ज्यादा है, धन की या समर्पण की, समर्पण की। तो उसको लगता था इसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है, त्याग की, समर्पण की। तो वो भगवान को समर्पित होता है। जब पुजारियों का, जब भक्तों का वो समर्पण देखते हैं तो फिर उनको भी लगता है हमें भी समर्पित होना चाहिए, क्योंकि शायद समर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर जब 3 पग भूमि मांगी तो पहले तो उनको लगा कि मेरे से 3 पग भूमि मांगी है, और फिर शुक्राचार्य जी रोक भी रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी भक्त थे ना तो उन्होंने दे दिया, और वो 3 जमीन 3 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया। तीसरा पैर बोले कहां रखे, 2 पैर में सब कुछ नाम, उन्होंने कहा इसको मेरे सर पे रख लो। तो आज के इस सीन में प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान वहां उपस्थित हैं, जमीन ले चुके हैं, सब कुछ हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया भक्त प्रहलाद, उन्होंने बलि महाराज ने। तो भगवान ने कहा 15वें श्लोक में उससे पहले कि जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंदन जैसे घनिष्ठ संगियों से घिरे घिर कर एवं पूजित होकर भगवान बैठे हैं तो उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से छलाछल हो उठी। उनके पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल भगवान को प्रणाम किया। किन्होंने? प्रहलाद महाराज ने, वो भी उपस्थित हो गए वहां पर और प्रणाम किया भगवान को। और आज श्लोक में कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने फिर क्या बोला कि हे भगवान, इस बलि को, अपने ही वंशज को बोल रहे, इस बलि को इंद्र का पद का महान ऐश्वर्य आपकी ही तो देन है। अगर आज आपने ये ऐश्वर्य दिया भी है बलि महाराज को तो वह आप ही की देन है, और अब उसी को आपने छीन लिया, तो मेरे विचार से आपका देना और लेना एक सा ही सुंदर है। दोनों सुंदर एक्टिविटीज, आपने दिया भी आपने और लिया भी आपने। आरती में गाते हैं ना कई लोग, कौन सी आरती आपको याद होगी? बात हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा, है ना? जो दिया है वो भी आपने दिया है, तो हमारा कुछ नहीं है, हम आपको देना चाहते हैं। ये तो खाली ऊपर से बोलते हैं, इस आरती के पीछे भी लोगों का भाव ये होता है कि अब क्या दे रहे हो। आरती इसीलिए गाते लोग ना, अब क्या अच्छा कर रहे हो हमारे लिए। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि आपका देना और लेना दोनों ही क्या है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, मधुरम मधुरम, सुना आपने? वदनम मधुरम वसितम मधुरम, भगवान की एक एक चीज को पिबतम मधुरम, हर अंग को, चलने को, बोलने को, क्रिया को, सृष्टि करने को, कृपा करने को, सबको मधुर कहा गया है। सबके अंदर मधुरता है। और बताया जाता है कि भगवान भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी ये काम कर दें। क्या बोला आज के श्लोक में प्रभुपाद जी ने, शुरुआत कहां से की? यस्य हम अनुगृहामि हरिष्य धनम शने शने शने, अर्थात धीरे धीरे मैं उसका धन छीन लेता हूं जिसके ऊपर कृपा करता हूं। और कृपा किस पे करते हैं? हर एक पर नहीं करते, हर एरे गेरे नथु खेरे पर नहीं करते। भगवान कहते क्वालिफिकेशन चाहिए इसकी। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो शास्त्रों में बोलते हैं और कई जगहों पर प्रसंग मिलता है इस तरह का कि भगवान की जो ये कृपा है ना, कृपा करने का जो स्टाइल है, क्योंकि स्वराट है वो, स्वराट मतलब पूर्ण स्वतंत्र है। जैसे एक राजा है अपने गार्डन में घूम रहा है, अपने राज्य में जा रहा है, तो उसको किसी से पूछकर लेफ्ट या राइट टर्न लेना होगा, उसको किसी से पूछकर पेड़ का फल तोड़ना होगा क्या? राजा है, पूरा राज्य उसका है, कहीं से कुछ भी दे दे, ब्राह्मणों को गाय कितनी लाख दान कर दे, जहरात कितना ही दे दे, लेफ्ट मुड़े राइट मुड़े, फुल्ली इंडिपेंडेंट। और किस पे कृपा करनी है किस पे नहीं करनी, ये उनके ऊपर है। कई बारी कोई प्रसन्नता की खबर लेकर आता है तो उसको अपने गले की माला दे देते हैं, और कई बार उसको बोलते हैं इसको थोड़ा सा ये दे दीजिए, है ना? तो राजा है, स्वतंत्र है, कुछ भी दे सकते हैं, किसी से कुछ भी छीन सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अपनी गवर्नमेंट का देख लीजिए, आपको पहले नोट दिए सारे और बाद में छीन लिए, है ना? वापिस दे दो जी, बहुत हो गया। या फिर मेट्रो बनाना, कहीं से आपकी दुकान के ऊपर से निकल रही है, आपका रोड पर आ गया, आप कितने केस कर लो, कितने कुछ कर लो, गवर्नमेंट क्या करती, सुनती है? तो दिया किसने था? ये सब कुछ यहीं का था, उपस्थित हमको मिला और ले भी लिया उन्होंने। तो उसी तरह जो भगवान है ये भी किसी को कुछ भी दे सकते हैं और वापस कैसे भी ले सकते हैं। जो भक्त होते हैं और जो अभक्त होते हैं, इनके दोनों की मानसिकता में पूरी तरह से बदलाव होता है। जो अभक्त होते हैं वो मैं और मेरा करके सब कुछ इकट्ठा करते हैं कि किसकी बुद्धि से आया सारा धन, किसने कर्म किया था, जोर से बोलो, किसके अंदर अच्छे आइडियाज आए थे, किसने अच्छी प्लानिंग की थी, मैंने किया था स्ट्रेटेजिक प्लान, मैंने किया था टीम बिल्डिंग, मैंने किया था ये सारा कुछ, इसलिए इसका फल किसको मिलना चाहिए। तो ये मैं जब शुरू होती है, अज्ञानतावश अहंकारवश व्यक्ति सब कुछ अपना मान बैठता है। लेकिन एक भक्त है जो आत्म साक्षात्कार के पद पर है, जिसे पता चल गया कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, जैसे बोलते खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाता है, तो उसको पता है कि मैं जब पैदा हुआ था कुछ लेकर नहीं आया था और जब जाऊंगा भी तो कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। यहां तक कि जो शरीर मेरा है यह भी किसके द्वारा दिया है, मैं कोई रॉ मटेरियल थोड़ी साथ लेके आया था कि हाथ यहां लगा लू, पैर यहां लगा लू, बुद्धि इधर लगानी चाहिए, नहीं, ये सब लगा लगा आया था। तो भक्त लोग जानते हैं कि मेरा जो ये शरीर है ये 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है और ये मैंने किसी लेबोरेटरी में, किसी साइंटिस्ट ने, किसी न्यूटन या आइंस्टीन ने अपनी लेबोरेटरी में नहीं बनाया था इसको, इनको नाम दिया हो सकता है उसने, केमिकल्स का नामकरण किया होगा, बट वो केमिकल यहां एग्जिस्ट करते थे। तो सारी चीजें यहां पर भगवान के द्वारा प्रदत्त, एवरीथिंग इमिनेट्स फ्रॉम मी, कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही निकलता है तो सब कुछ मेरा है। तो जो भक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कार के पद पर हैं, वो समझ जाते हैं कि हम तो क्या हैं, शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा किसका अंश है, भगवान कृष्ण का, मामेव अंश कृष्ण कहते हैं। ओके, आत्मा आपका अंश हो गया, वो कहां है आत्मा, कहां है, कहां है आत्मा, हमारे शरीर के अंदर है ना, वो जो आत्मा है वो कौन है, वही मैं हूं, और उसके ऊपर जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है जिसे बोलते हैं निकृष्ट शक्ति, जिसके 8 धातु 8 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार भूमि जल अग्नि वायु आकाश, तो 2 शरीर हमारे को आत्मा के ऊपर कवरिंग के रूप में मिलते हैं, 5 तत्व का ये देह और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार का। तो इनमें से कोई आइटम हमने बनाई है क्या, इन 8 एलिमेंट्स में से नहीं बनाई, पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो भक्त ये जानता है कि मेरा जो देह भी है ये किसका है, किसके द्वारा प्रदत्त है, भगवान के द्वारा। मानस देह गेह जे की छुमोर अर्पिलु त्वापदे नंद किशोर, हे नंद किशोर कृष्ण, मेरा जो कुछ भी है, जो लगता है दुनिया को देखने में, या मेरे अंदर जब अहंकार वश ये लगता है कि कुछ मेरा है, मैंने कमाया है, या ये मेरे को, इट बिलोंग्स टू मी, तो वास्तव में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। तो कहते हैं मानस, ये मनुष्य शरीर, मानस देह, ये जो शरीर है, गेह मतलब मेरा परिवार, जो मैंने मकान बनाया अपना, मानस देह गेह, ये शरीर और ये मकान, जे कुछ मोर, घर खाली घर नहीं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरी मां, मेरा जो भी धन है वो किसका है, आपका है। अर्पित तोया पद नंद किशोर, मैं आपको अर्पित करता हूं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा डिटैच रहते हैं, इसलिए वो उनकी आसक्ति नहीं होती चीजों में, उनको पता है कि किसका है सब। उसी तरह जो ये बलि महाराज हैं, ये पूरी तरह से भक्त हैं, इन्हें पता है कि क्या क्या नहीं, लेकिन यहां पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उस पद पर रहकर इनको भी शायद अज्ञानता खींच लेती अपने पास, यकश कर लेती कि मैं उस पद पर हूं, इसलिए मांगिए क्या चाहिए, इसलिए आपने इनका घमंड तोड़ने के लिए क्या किया, 3 पग भूमि मांगकर छल किया इनके साथ, आप छलिया हैं, है ना, आपने छल किया और सब कुछ इनका हर लिया। कई लोगों को ज्ञान का घमंड होता है, लेकिन घमंड कितना है इसका ज्ञान नहीं होता है, और इसी की वजह से व्यक्ति संघर्ष करता है। तो इग्नोरेंस अर्थात अज्ञानता भगवान किस प्रकार दूर करते हैं, छल के रूप में। अब कोई बोल सकता है कि भगवान ने छल क्यों किया, भक्ति तो थे मांग लेते, क्यों किया छल। तो जो स्वराट भगवान का गुण है ना, कि मैं कुछ भी करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी है ना, तो भगवान की मर्जी है, वो कुछ भी करें कैसे भी करें, लेकिन उनका जो कोई भी कृत्य है, उनकी कोई भी डीलिंग है, उनकी प्लस उस भक्त के बीच के ये अंदर का मामला है, उन दोनों का मामला है। भक्त भी रैलिश कर रहा है और भगवान भी रैलिश कर रहे हैं उस एक्टिविटी को, भगवान मांग कर छोटे होकर हाथ फैला रहे अपने भक्त के आगे, और भक्त जो है उनको देकर सब कुछ निछावर कर छल के द्वारा उनको आनंद दे रहे, लीजिए सर व्हाट एवर यू वांट, इट्स ऑल योर्स। भीष्म पितामह वो भी एक अलग प्रकार के रस का आस्वादन कर रहे हैं, तीर मार रहे हैं भगवान को, और भगवान को तीर लगते हैं तो खून निकलता है, घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल मिट्टी, भगवान के सुंदर शरीर, अद्भुत रंग भगवान का काले घने बादलों जैसा और मिट्टी का रंग सोने जैसा है ना, वो भगवान के सुंदर बालों पर पड़ रही है, उनके बालों पर, उनके मुखमंडल पर तो ऐसी सुंदर आभा निकल रही है। और भीष्म पितामह तीर चला रहे हैं, वो देखते हैं, वो जानते हैं मैं तो भक्त हूं भगवान का और मेरे सामने मेरे भगवान हैं, तो उनको तीर मारकर वीर रस का आस्वादन करा रहे हैं, लीजिए भगवान एक और आया ठा। तो रसों का आस्वादन हो रहा है। कृष्ण तुमने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भगवान ने कहते हाँ नहीं उठाऊंगा, कहते मैं तुमसे उठवाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा ली है भगवान। भगवान ने कह रहे भक्त तो मेरा ही है, प्रतिज्ञा ले ली वो मेरे खिलाफ, तो भक्त की बात को भी पूरा रखना है ना। तो क्या किया, मारे 5-7 तीर खूब मार लिए, खून निकल रहा है भगवान के मुखारवण, इधर से उधर से, इधर से भीष्म पितामह का भी निकल रहा है खून। और भगवान ने क्या किया, उठा लिया रथ का पहिया, आज मैं छोड़ूंगा तुझे, अर्जुन ने पकड़ लिया। ये सीन क्या रहे, मुझे याद आता है बार बार कि अहो जिनकी मैं रोज आराधना करता हूं वो मेरे भगवान मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, उनके शरीर से खून निकल, इतना सुंदर लग रहे हैं, मतलब रसों का आस्वादन हो रहा है। कुंती महारानी विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना दसत्य भाया वनवास कृतिष्ठा, कि हे भगवान इतने कष्ट तो मान ही हो गया, मैं तुम्हारी बुआ लगती हूं, घर में कोई पुलिस में हो ना व्यक्ति छोड़ी चाती छोड़ी करके चलता है, कोई वकील हो तो हर बात पे नोटिस देने की बात करता है, किसी का घर में कोई जज हो तो कहता मैं कत्ल भी कर दूं मेरे चाचा बचा लेंगे, या कुंती कह रही मैं तेरी बुआ हूं और हमें इतने कष्ट, क्या कर दिया, बचपन में विष दे दिया गया मेरे बच्चों को, मेरे पति को समय से पहले छीन लिया गया, 5-5 बच्चों को पालना पड़ा, आग लगा दी गई लक्षा घर में सबको मारने के लिए, ये युद्ध दे दिया गया हमें, कभी कंप्लेन नहीं करी। यशोदा देख तेरा बेटा तो सब कुछ कर सकता, बोलना एक चक्र छोड़ करते बराबर सबको एक ही बारी में, नहीं, इतने कष्ट आ रहे हैं लेकिन हर कष्टों में कृष्ण उनके साथ है। तो कुंती महारानी कह रही है हमारे ऊपर और कष्ट आए, और कष्ट दीजिए भगवान, क्योंकि आपका संग मिलेगा, आपका दर्शन होगा, और आपका दर्शन करके तो व्यक्ति दोबारा वापस आता ही नहीं है, तो आपका संग प्राप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, कई बार भगवान खुद भी भक्तों के साथ इस प्रकार के पंगे लेते हैं कि भक्त जो है परेशान हो जाते हैं एक बार तो, लेकिन वो भी दिव्य रसों का आस्वादन है। द्वारका में सत्यभामा को इच्छा करने पर भगवान ने इंद्र से लड़कर परिजात का पेड़ लगा दिया बरामदे में कि ये तुम्हारा हुआ जाओ, अब कभी एक रानी को कुछ मिल जाए तो दूसरी रानी परेशान होंगी कि नहीं। चित्रकेतु वाले केस में क्या था, कितनी वाइफ थी उनकी, 10, 1 करोड़ पत्नियां, एक भी रानी से एक भी संतान नहीं, भक्तों की कृपा से एक संतान हो गई एक को। अब चित्रकेतु का सारा ध्यान किसकी तरफ, 99,99,999 पत्नियों को करा साइड, एक का ही ध्यान, तुम बहुत अच्छी हो ये लो बच्चे को ये खिलाओ, एक के साथ ही लगे रहे। और 99,99,999 रानियों ने इकट्ठी मीटिंग करी, अब इतनी लोग आएंगे कहां पर, वो अपने सोच से बाहर है, बट इकट्ठी मीटिंग करी, क्या करें जी हमें तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो कहते हैं राजा का आकर्षण या उससे प्रेम इसलिए है क्योंकि एक संतान होगी उसकी, अभी छोटी सी संतान थी, तो क्या कहते क्या करें, कहते एक काम करते बच्चे को विष दे के मार देते हैं फिर बराबर हो जाएगा सब, विष दे दिया गया। तो इधर क्या है कि परिजात का वृक्ष लगा दिया सत्यभामा के लिए, तो भगवान को लगा रुक्मिणी जो बड़ी पहली प्राइम गोपी है या मेरी पत्नी है तो इनको जरूर फील होगा कि उनके लिए लिया है मेरे लिए नहीं लाए। तो कृष्ण सोच रहे थे अब कुछ बोलेंगी अब कुछ कहेंगी, है ना, थोड़ा सा नखरा दिखाएंगे, मैं बोलूंगा थोड़ा पानी ले आओ, पानी क्यों ले आए, कुछ ना कुछ है ना। तो उनको लगा कुछ ऐसा होगा, कुछ नहीं हुआ, वो अपनी सेवाएं वैसे ही कर रही हैं, चावल डुला रही हैं, बात करके कहते हैं यार कमाल है, इनको कुछ हुआ ही नहीं। तो भगवान ने फिर बोलना शुरू किया, मतलब कहा कि देखो वैसे मैं ना, मुझे लगता मैं तुम्हारे योग्य नहीं था, तुमको मैं ले तो आया हर के, बट मुझे लगता वो जो शिशुपाल था ना वही तुम्हारे लिए योग्य था, राजा था, महाराजा था, क्या क्षत्रिय था, कितनी सेना थी उसके पास, मुझे लगता कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। और मैं क्या, मैं तो ग्वाल बाल था, गायें चराने वाला व्यक्ति रहा, मेरी कोई शिक्षा ढंग की नहीं, कुछ वो नहीं, यार दोस्त ढंग से नहीं, क्या गायें चराता चराता दूध मक्खन चुराता चुराता आ गया है ना, तुमने मुझे पसंद कर लिया, इससे बढ़िया किसी और क्यों करते। तो ऐसे बड़े सारे सरकास्टिकली उन्होंने व्यंगात्मक ढंग से या टोंट वाली बातें करी, और रुक्मिणी ये सुन रही कि मुझे छोड़ जाएंगे इतनी उम्र में, ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, गिर गई, बेहोश हो गई रुक्मिणी। और उसके बाद जब भगवान ने उठाया उनको, सॉरी सॉरी बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था है ना, तो फिर रुक्मिणी जी ने उन सारी बातों को ठीक प्रकार से फिलोसफिकली खत्म करा कि किस प्रकार आप महान है भगवान। तो कई बार भगवान अपने भक्तों के साथ इस प्रकार का लेन देन करते हैं कि भक्त लोग उसको भी रिलिश करते हैं, चाहे कैसे भी देखने में लगे ऊपर से। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो वृंदावन में जो बांसुरी बजती है तो वृंदावन के बांसुरी का ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग प्रभाव पड़ता है। नीचे कहां तक, ये पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम बोलते हैं, वो अल्टीमेटली आ रहा है शेषनाग के फनों पर, सारा ब्रह्मांड टिके हुए नीचे। तो जब भगवान ऊपर बांसुरी बजाते हैं ना तो भक्त को तो सुनाई देगी ना, तो बलराम जी हैं वो तो उनको सुनाई दे रही है, वो झूम रहे हैं, बोली नहीं मतलब दूसरी बजाते हैं। तो शेषनाग झूलने लगते हैं, शिव जी का ध्यान टूट जाता है, ब्रह्मा जी नाचने लगते हैं, ये सब ऐसे 8-7 शुरू में ऐसा शुरू हो जाता होना। ऊपर जो है जब बांसुरी बजती है तो अलग अलग जो हिरन है, नदी है, बहना बंद कर देती है, हिरन के स्तब्ध हो जाते हैं, गाय कान खड़े हो जाते हैं, पूरा का पूरा बांसुरी बजने से हलचल मच जाती है। और इधर जब बांसुरी बजाते हैं ना तो हर एक गोपी को अलग ही मैसेज जाता है, उनके कानों में प्रवेश करता है। सबको मैसेज क्या जा रहा है, चांदनी रात है, शरद की, तुम घर बैठी हो है ना, आओ मेरे से मिलने के लिए। तो जब बांसुरी जाती है कान में तो गोपियां सब छोड़कर कहां भागती है, कृष्ण को वृंदावन में उन निकुंजों में ढूंढने लगती कि कहां है कृष्ण, कृष्ण ने बुलाया है, कृष्ण ने बुलाया, एक नहीं सारी आ गई। और वहां पहुंचने के बाद कृष्ण कहते हैं ये क्या चक्कर है, आप सब तो शादीशुदा हो, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे घर में आना खाना पीना सब चल रहा था, तुम ये क्या यहां पर क्यों आ गई रात को एक पराये पुरुष से मिलने के लिए, दिमाग खराब है तुम्हारा, संस्कार है कि नहीं तुम्हें। वो कहते हैं कमाल हो गया, हमारे प्राणेश्वर कृष्ण जिनसे हम इतना प्रेम करती हैं बांसुरी बुझा के SMS करके बुलाया है ना, और अभी क्या बोल रहे हैं सॉरी वापिस जाइए आप, ये शोभा नहीं देता। SMS से एक ध्यान आया, एक व्यक्ति की ना नई नई सगाई हो जाती है, तो बड़ा खुश होते हैं वो, अचानक लड़की का मैसेज आता है उसको कि मेरी सगाई कहीं और हो गई है, आज के बाद मुझे मैसेज मत करना। हार्ट अटैक हो जाता है, ड्राम से गिर जाता नीचे, अभी तो होकर आए थे वापस आ गया। फिर घर वाले उठाते हैं, फिर वो मैसेज फोन देखते हैं, दूसरा मैसेज देखते हैं, कहते सॉरी गलती से आपको भेज दिया। तो फिर गिर जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान की जो मैसेज है बांसुरी, वो तो साफ साफ बोल रही कि मेरे से मिलने आओ। और वहां पहुंचने के बाद भगवान किस प्रकार का लेन देन, किस प्रकार रसों का आस्वादन कर रहे हैं कि गो बैक, दिस इज नॉट गुड, वापस जाओ। तो भगवान का हर तरह से अपने भक्तों के साथ जो रिलेशन है, वो ऐसा भी हो सकता है कि जो देखने में ठीक ना लगे, भक्तों की रक्षा के लिए, वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए, मथुरा वासियों की रक्षा के लिए भगवान युद्ध कर क्षेत्र छोड़कर चले गए और रणछोर कहलाने लगे, माखन चोर भी कहलाए, कमी नहीं थी घर में गायों की, मक्खन की, दूध की, लेकिन माखन कौन चोर कहलाना पसंद करेगा बताइए। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. गीता में बोल रहे, कहीं बोल रहे मैं चोर हूं? नहीं, सब कुछ बता रहे मेरा ओपोलेंस ये है, मेरी सारी विभूतियां हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसी हरकतें करते कि चोर कहलाते हैं. एक जगह जब भगवान श्री कृष्ण थे, विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन पहुंचा उनके पास, और साथ में कौन पहुंचे बाद में? अर्जुन भी पहुंच गए. तो दुर्योधन बैठे थे सर के पास और अर्जुन बैठे थे चरणों के पास. जब भगवान की नींद खुली तो किसको बोला क्या मांगो? अर्जुन को पहले बोला, भाई तुम मांगो, तुम्हें मैंने पहले देखा है ना. और पूरी कन्वर्सेशन के बाद किसके हाथ में क्या लगा? दुर्योधन के हाथ में क्या लगा? नारायणी सेना भगवान की विजयी जो रहती थी हमेशा. और अर्जुन के हाथ अकेले, जिसने शस्त्र भी नहीं उठाने, निहत्थे कृष्ण लगे हाथ. तो दुर्योधन ने कहा भगवान को, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास. क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए हार बहुत मायने रखती है, तो जो हार जाता है ना वो सदैव परेशान रहता है. कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, सदा रहेगा उदास. माखन तो दुर्योधन ले चला, छाछ बची तेरे पास. जब मक्खन वगैरह इत्यादि निकाला जाता, असली चीज मक्खन होती है ना, छाछ से इतना नहीं होता. तो उसने नारायणी सेवा सेना को मक्खन, मक्खन से क्या किया, उसको कंपेयर किया और बोला तेरे हाथ में क्या लगा? कृष्ण लगे. जिसने बोला कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं. लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो जानते हैं कि हम लोग क्या था हमारा, सब कुछ तो भगवान का है. तो अर्जुन ने भी बोला एक सेंटेंस, अर्जुन ने कहा जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं कभी उदास. भाई भगवान का दास है तो उसको किस बात का, किस बात की उसको प्रॉब्लम. कहते जीत निश्चित है मेरी, भक्त नहीं कभी उदास. कहते माखन ले मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास. माखन ले मैं क्या करूं, ले जा माखन, ले जाना तो असली माखन चोर तो मेरे पास बैठा है ना. तो भगवान ने ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनाई युद्ध में, क्या क्या नहीं कर दिया. तो भगवान जब भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो अब इन सब लीलाओं को देखने का प्रयास कीजिए. शुरुआत कहां से हुई थी, किस किस एग्जाम्पल को लिया था? भीष्म पितामह का. देखने में क्या लगेगा लोगों को, जो भक्त नहीं है क्या लगेगा कि देखिए भगवान के इतने बड़े भक्त थे है ना, तीर चला रहे हैं, भगवान के साथ लड़ रहे हैं, ये कैसी भक्ति है? भगवान पर तीर चला दे, कितना बड़ा ऑफेंस कर दिया उसे. और भगवान ने अपना वाव तोड़ दिया, अपना वचन तोड़ दिया मारने के लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों को कंडेम करेंगे लोग. दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था? कुंती महारानी का. वो कह रही है कि भगवान मुझे और दीजिए, क्या कष्ट दीजिए. ये भी मतलब है भगवान उनकी बुआ के लड़के है ना, बुआ लगती है वो उनकी, तो भगवान उनके अपने हैं, उसके बावजूद भी कष्ट आ रहे हैं. इससे अच्छा तो भक्ति ना ही करे व्यक्ति ना, मतलब भगवान भी रक्षा नहीं कर रहे हैं यहां पर. लेकिन कुंती महारानी, उधर भीष्म पितामह आनंद ले रहे हैं, इधर कुंती महारानी आनंद ले रही है भगवान का दर्शन कर करके. इसलिए बोल रही है क्या कि मुझे और कष्ट आए. रुक्मिणी जी को उल्टा सीधा बोला भगवान ने, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर जीत गई, क्योंकि वो रैलिश कर रही है उस चीज को. दूसरे को लग सकता है देखो कृष्ण है, एक तो लेकर आए लड़की को, उसके बाद से ऐसा बोल रहे हैं कैसा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, इतनी बड़ी उम्र, बच्चे पोते हो गए, अब ऐसी बात कर रहे हो, ये तो तलाक वाली बात कर रहे हो आप, है ना. गोपियों को बंसरी बजाने के बाद बुला लिया और अब क्या बोल रहे हैं वापिस जाओ, ये क्या मतलब है? पहले तो बुलाया, अब कह रहे वापिस जाओ ठीक नहीं है. तो बाहर से देखने में लग सकता है कि भगवान कई बार क्या करते हैं, ठीक नहीं करते अपने भक्तों के साथ. यहां बलि महाराज के इस प्रसंग में भी क्या हुआ कि भगवान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन छीनने के पीछे भी बलि महाराज आनंदित हैं और बलि महाराज को इस संसार से ज्यादा भगवान को कहा कि तुम मेरे, भगवान ने कहा मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूंगा, कहां पर? नीचे के लोगों में, जो कि बोला जाता है वील स्वर्ग, जो कि ऊपर के स्वर्ग लोगों से भी ज्यादा ऐश्वर्यवान जगह है। रोज भगवान का दर्शन करेंगे, अभी तो इतने समय बाद हुआ और वहां नीचे रोज दर्शन। तो भगवान जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं ना, इन प्रसंगों के द्वारा हमें पता चलता है कि वास्तव में भगवान जिस लीला को अंजाम देते हैं वो लीला भगवान और भक्तों के बीच का मामला है। भक्त भी रिलीज़ कर रहे हैं, भगवान भी रिलीज़ कर रहे हैं। जब हमारे साथ इस प्रकार की घटना होती है कोई, जैसे भगवान ने बोला हरिष्यत धनशनम, जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हम उस श्रेणी के भी भक्त नहीं है, इन प्रसंगों को सुनकर सीखकर हम उस स्तर पर आना चाहते हैं कि भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा, आम को कहीं से भी खाए मीठा ही लगेगा ना, उसी तरह भगवान की हर लीला, भगवान का अपने भक्तों के साथ हर डीलिंग भक्तों के लिए रिलिशेबल है। हमारा क्या चला जाएगा बताइए ना, हमारा क्या निकल जाएगा, क्या लॉस हो जाएगा अगर भगवान हमसे कुछ ले जाए, बताइए क्या लाए थे हम? इसलिए भक्त जानते हैं कि हमारा तो कुछ था ही नहीं, अगर जो है भी अगर भगवान उसको लेना भी चाह रहे हैं, इस वाली स्थिति में रखा भी हुआ है तो भगवान की मर्जी। लेकिन जो मैं है ना, अहम, इसका दुख होता है, इसका प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से हम दुखी और परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमारी जो इमेज है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो पोजीशन है, कल को लोग बोलेंगे देखो क्या हो गया इनके साथ। प्रभुपाद जी ने जब भक्ति शुरू करी है ना, भक्त तो थे ही हमेशा, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से और उसमें आए तो सबसे पहले उनकी फैक्ट्री जल गई, पूरी कारखाने जल गया उनका दवाइयों का। तो प्रभुपाद जी तब ये श्लोक बोला और बोला भगवान तुम्हारी कृपा है, जिसमें तुम कृपा करते हो ऐसी चीजें छीन लेते हो जो भार के रूप में उनको नीचे रखती हैं। आप समुद्र में तैर रहे हो, आपको बोलो भाई साहब ये एक ईंट और ले लो, जरा वहां लेते जाना, रखोगे ईंट अपने पास? मेरे को पांच ईंटें रख लो, कोई भी नहीं रखना चाहेगा, भार के साथ कोई ट्रेवल नहीं करना चाहता। स्विमिंग पहले खुद के प्राण पे खड़े उड़ रहे हैं स्विमिंग करते हुए समुद्र में पड़े हुए, और वहां पर अगर सोने की ईंट मिल जाए तो तब तो रख लोगे। सोने की चार ईंटें मिल रही हैं, चार ईंटों का बैग दे दिया आपको, अब तैरो कैसा लगेगा? मैं कोशिश तो करेंगे सारे कि जहां तक ले जा सकूं ले जाता हूं, उसके बाद देखूंगा, अगर नहीं होगा तब देखूंगा, उसमें तीन तीन रख लूंगा, एक निकाल लूंगा, फिर मुश्किल लगेगा तो दो निकाल लूंगा, दो रख लूंगा, और थोड़ा मुश्किल लगेगा एक ही ले जाऊंगा, दिमाग खराब, एक ही, चल ठीक है तीन छोड़ देता हूं, और जब पता चले किनारा आ ही नहीं रहा है, हालत खराब है, फिर कहते तो एक काम करो, सारा छोड़ने से मरना चाहिए, चारों को लेके मर जाता हूं। होंगे ऐसे लोग जो कहेंगे चारों ईंटों पकड़ के मर जाऊं, चलो मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, चार ईंटों के साथ मरना कितना महान है देखो। तो भगवान जो है अगर अपने भक्त को बचाना चाहते, किसी प्रकार का भार नहीं चाहते, उसके बाद अहंकार का भार नहीं चाहिए हमें। ये मल रूपी सोना, ये धन जो हमें, जिसने जिसने हमारा वेट बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग देह से और देह से संबंधित चीजों से बाहर नहीं सोच पाते, भगवान के विषय में नहीं सोच पाते, जिसकी जिन चीजों की वजह से ये हमारा नुकसान करते हैं, इसीलिए भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, हरिष्य तद धनम शने शने शने, क्योंकि मालूम है अगर मैंने बाईपास कर दी तो खत्म हो जाएगा। यहां भी बलि महाराज की तरह एकदम नहीं कर सकता, बलि महाराज से बोला तीन कदम और सब कुछ छीन लिया इतना छलिया बनकर, तो भगवान कहते अगर मैंने यहां किसी के साथ कर दिया तो क्या होगा, ये तो चला जाएगा कहीं और। तो भगवान झटका देते हैं लेकिन धीरे धीरे देते हैं, एकदम नहीं देते, और कईयों को एकदम दे देते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कुछ? कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान क्या मर्जी है आपकी, है ना? आपने जो सोचा होगा हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा, तो हर चीज में अच्छा सोचना। आज भगवान की इस सुंदर लीला को देखकर हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की परीक्षा आ जाए हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। यहां तक कि असुरों के साथ जब घटनाएं हो रही हैं तो भगवान असुरों का भी उद्धार कर रहे हैं। भगवान को देखकर मरने वाले, भगवान के द्वारा मरने वाले सब लोगों का उद्धार हो रहा है। तो इसलिए भक्तों को चिंतित नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भक्त सबसे पहले अभय हो जाता है, उसको भय नहीं रहता। अभय चरणारविंद रे, कि भगवान के चरण कमलों में जब वो शरणागति ले लेता है तो उसका भय खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको पता है मैं आत्मा हूं और आत्मा मरती नहीं है। तो मैं तो भगवान का अंश हूं, और जिस फिल्म में, जिस स्वप्न को हम जी रहे हैं 50-60 के साल के स्वप्न को, उसमें अगर कोई उथल पुथल आ भी रही है तो वो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हो सकते हैं, या मेरा भगवान अपनी तरफ भक्ति बढ़ाने के लिए मेरे ऊपर इस प्रकार की कृपा कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो इसलिए हम लोगों को भी बलि महाराज की तरह तैयार रहना चाहिए कि हमारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि भगवान वामन के रूप में ना आए हमारे सामने, इनकम टैक्स वालों के रूप में आ जाए, है ना, विजिलेंस के रूप में आ जाए। हमारे सामने अगर भगवान स्वयं नहीं आ रहे और हमारे सामने दूसरे बस दूसरे रूप में आ रहे हैं लोग, लेकिन वो भगवान का रूप नहीं है, वो कोई ना कोई गड़बड़ की है इसलिए सामने आ रहे हैं इस तरह के लोग। लेकिन भगवान के भक्तों को इतना अच्छा बन जाना चाहिए, इतनी अच्छी चेतना रख लेनी चाहिए कि कुछ भी स्थिति हो मुझे भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई भी परिस्थिति हो कुंती महारानी की तरह मैं और भगवान की तरफ जाऊं, मैं और भगवान से प्रार्थना करूं, किसी भी परिस्थिति में हूं मैं भगवान का नाम लेना ना छोड़ूं, कितना ही बीमार हूं दवाई नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है दवाई छोड़ते ही मेरा डिजीज जो है वो बढ़ने लगेगा। दवाई लेता हूं तो उसमें कंट्रोल रहता है और धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। मुझे लगता है कि बड़े समय से दवाई ले रहा हूं इसलिए खत्म नहीं हो रहा, क्या कारण है? अरे हमारी बीमारी बड़ी लंबी है, हमारी बीमारी बहुत क्रॉनिक है, बहुत लंबे समय से डिजीज है इसलिए एकदम नहीं हो रहा। इसलिए दवाई लेते रहें, और दवाई कलयुग में केवल यह बताया कि भगवान की शरण हरि नाम के द्वारा ली जा सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भगवान मंद मंद मुस्काते हैं भक्तों की स्थिति पर। जब उनको टेस्ट पेपर देते हैं, टेंथ वाले बच्चे को ट्वेल्थ का पेपर कभी नहीं आता, फिफ्थ क्लास के बच्चे को टेंथ क्लास नहीं देते, क्यों? क्योंकि टीचर को मालूम है इसकी क्लास ही वो नहीं है। उसी तरह जब हमारी क्लास कुछ नहीं है, जब हम लोग अपनी भक्ति कर रहे हैं तो भगवान जो हमसे टेस्ट लेते हैं ना, वो उतना ही ले सकते हैं जितना हम सहते हैं, और उतना ही देते हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तैयार रहना चाहिए भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न तो नहीं होगा? है कुछ?
हरे कृष्णा। वामन भगवान ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी और बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य जी ने उन्हें अपोज की मत करो इसको, तो इसको किस तरीके से देखें?
किसको?
उनके गुरु हैं
शुक्राचार्य,
गुरु ने कहा मत दो, फिर उन्होंने इग्नोर किया,
शुक्राचार्य जी ने मना किया कि मत दो इनको। तो कई बार गुरु हैं मना कर रहे हैं तो भी भक्त ने क्या किया, गुरु का आज्ञा का त्याग करके भगवान को समर्पित हुए। तो हमें ये देखना चाहिए कि गुरु का काम होता है भक्त को भगवान से मिलाना, भक्त को ये सिखाना कि कैसे समर्पित होना भगवान की तरफ। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए लेकिन भक्ति से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, पूरा दृढ़ता के साथ भक्ति करें। लेकिन अगर गुरु ही पथ भ्रष्ट हो जाए या गुरु भगवान के शरण में जाने से मना करने लग जाए तो उनकी आज्ञा का या उनका ही त्याग कर देना चाहिए। पिता ने बोला खबरदार, हिरण्यकश्यपु ने मना किया प्रहलाद को मत ले भगवान का नाम। प्रहलाद ने क्या किया? उन्होंने देखा अरे पिता तो एक गुरु के समान होते हैं और पिता भगवान की शरण में जाने से मना कर रहे हैं, तो किसका त्याग करूं, भगवान का या पिता का? तो इन्होंने पिता का किया, इन्होंने गुरु का किया, किसी ने किसी का किया, इसलिए किया ताकि भक्ति में अवरोध ना हो। भगवान इस प्रकार के त्याग से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।